मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 8 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मनीष कुशवाहा, जो धार मध्य प्रदेश से हैं, और प्रवीण अंचल, जो बिलासपुर से हैं। तो मनीष और प्रवीण, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब छोटी सी सलाह मेरे उन नौजवान साथियों के लिए जिनके अब भोपाल आने में कुल 11 दिन ही शेष रह गए हैं, यानी कि 6th बैच के होने वाले अपने स्टूडेंट्स के लिए। मित्रों, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे हेल्थ के बारे में बात की थी कि प्लीज आप सब अपने हेल्थ पर विशेष रूप से ध्यान देना शुरू कर दें, और मुझे यकीन है कि आपने ऐसा शुरू कर भी दिया होगा। उसी में मैं एक बात आज यहां और ऐड करना चाह रहा हूं, और वो ये कि सामान्यतः क्या है कि हमें कुछ एक अलग किस्म की एक दैनिक जीवन जैसी बीमारी हो जाती है, जैसे समय समय पर किसी का सिर दर्द होने लगता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को हल्का फुल्का फीवर आने लगता है, किसी का गला खराब हो जाता है, किसी को सर्दी खांसी हो जाती है। ये मतलब एक सामान्य किस्म की बीमारियां हैं जो लगभग लगभग होती रहती हैं। तो दोस्तों, मेरी सलाह ये है कि यदि कुछ इस तरह की बातें आपके साथ हैं तो प्लीज आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के उससे संबंधित मेडिसिन अपने पास रखें, लेकर के आएं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि भोपाल में आपको उस तरह की सुविधाएं नहीं है। भोपाल राजधानी है, यहां की पॉपुलेशन 22 लाख लोगों की है। आपकी जो क्लास भी लगेगी वो मतलब समझिए कि राजधानी का जो केंद्र स्थल है वहां लगेगी। दवाइयों की दुकानें भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इस तरह की अगर आपको परेशानियां हुई तो उसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो आपकी क्लास अटेंड करने पर पड़ेगा। मैं वह नहीं चाह रहा हूं कि उसके साथ आप कोई समझौता करें। जैसे मान लीजिए कि सिर दर्द हो रहा है तो आप सिर दर्द में भी अगर क्लास अटेंड करेंगे तो उसका उतना फायदा तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि दर्द परेशान तो करता रहेगा। तो बेहतर है कि अगर मुझे सिर दर्द की आदत है तो मैं अपना सुबह गोली खा ली मैंने नाश्ता करने के बाद, या जो भी डॉक्टर ने जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया है, तो कम से कम मेरा वो दिन अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो फिर ना तो मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, ना मुझे दवाई दुकान पे जाना होगा, तो मैं उस सबसे बच जाऊंगा और मेरा जो माइंड जो डाइवर्ट होगा वो डाइवर्ट नहीं होगा। तो मित्रों, मेरी ये सलाह है कि आप सब अपने 15 दिन आपको भोपाल में रहना है, 1-2 दिन आने जाने में लगाना है, तो उन दिनों का को ध्यान में रखते हुए उतनी मात्रा में अपने लिए मेडिसिन अपने पास रख लें तो ये बेहतर होगा। तो मित्रों, ये मेरी एक छोटी सी सलाह है। अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों, कल के न्यूज आपने सुनी, उसमें मैं दो तीन पॉइंट पर आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करना चाहूंगा। जो पहला बिंदु है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर है। मैंने जब संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया था तब थोड़ी सी बातें आपसे की थी। आज मैं उसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप देख रहे हैं कि अभी बहस चल रही है, तो आपको ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आए कि भाई राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दे दिया है तो उस पर अब बहस क्या होना है, कोई अधिनियम तो है नहीं, कोई राष्ट्र की समस्या नहीं है कि उस पर बहस हो, तो भाषण पर बहस क्यों हो रही है। देखिए, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, और वो ये कि चूंकि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है वो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया एक डॉक्यूमेंट है कि हमने पिछले साल क्या किया है, अब तक क्या किया है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो पिछले हमने जो समय बीता है उसमें क्या किया है, उस पर विपक्ष विचार करे कि सरकार कितना सही बोल रही है, कितना गलत बोल रही है, क्योंकि जब विपक्ष उस पर विचार करेगी तो वो चीजें जनता के सामने परफेक्ट रूप में आएंगी। दूसरा है कि वो भविष्य में क्या करने जा रही है, तो वो भविष्य में क्या करने जा रही है तो उसमें तो आप परिवर्तन भी करा सकते हैं। विपक्ष की भूमिका ही लोकतंत्र में ये होती है। अब जनता तो जाकर के नहीं कह सकती कि नहीं नहीं आपने बजट में ये जो कहा है ये गलत है। विपक्ष का चुनाव जनता ने किया है, विपक्ष उसको देखे। तो आप देख रहे हैं कि उसी पर्पस से ये बहस हो रही है और लोकसभा में भी हो रही है और राज्यसभा में भी हो रही है। लोकसभा में ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया है, राज्यसभा में बहस चल रही है, वहां पारित होना है। मित्रों, यहां जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये, सपोज कि लोकसभा में राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता, गिर जाता, यानी कि लोकसभा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव को गिरा देती या पारित नहीं करती, तो क्या होता? इसको आप एक संसदीय लोकतंत्र की पद्धति के तहत आपको समझना होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है और वो ये कि सरकार कौन बनाती है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का नेता, लेकिन आधे से अधिक, भले ही वो एक ही अधिक क्यों ना हो, यानी कि हमारे पास 542 की अगर संसद है तो 273 लोग जिसके साथ होंगे वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राइट? और ये जो राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, ये किसका डॉक्यूमेंट है, किस ये सरकार कह रही है? तो सरकार चाहे पिछले को झूठ बोल रही हो या आगे की नीतियां सरकार के हित में नहीं है, और अगर विपक्ष इसको सिद्ध कर देता है तो सीधी सी बात है कि विपक्ष बहुमत में है। ये सिद्ध हुआ ना कि विपक्ष बहुमत में है। प्रस्ताव कब गिरेगा, मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण का जो प्रस्ताव है कब पारित नहीं होगा? जब आधे से अधिक विपक्ष के हो जाए, और अगर विपक्ष इसको इसमें सफलता मिल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, और अगर अल्पमत में सरकार आ गई है तो सीधी सी बात है कि संवैधानिक रूप से अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उन्हें त्यागपत्र देना होगा, और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देते ही मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाएगी, फिर नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। अब फिर जो भी हो, तो दोस्तों राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना होता, याद रखिए उसका लोकसभा से पारित होना आवश्यक है। अगर लोकसभा से पारित नहीं हो पाता तो सरकार गिर जाएगी। यूं मान लीजिए कि यह एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव ही है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, अब प्रत्यक्ष रूप से यह अविश्वास प्रस्ताव ही है कि हमें सरकार के कहे हुए पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन यही धन्यवाद प्रस्ताव अगर राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सरकार के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के बहुमत का कोई भी प्रभाव प्रधानमंत्री के पद पर नहीं होता है, सरकार पर नहीं होता है। ये आपको विशेष रूप से मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो थी मजदूरी भुगतान संशोधन विधेयक। आपने देखा कि कल वो पारित हो गया है, और जो मजदूरी संशोधन विधेयक है वो इस बात को लेकर है कि जो मजदूर हैं उनका जो भुगतान किया जाए, जो मजदूरी का भुगतान किया जाए वो चेक से या उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाए। इसके पीछे भी कहीं न कहीं मजदूरों के हित का संवर्धन करना ही है, और कहीं न कहीं थोड़े से काले धन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की बात है। हालांकि काले धन पर नियंत्रण का इससे ज्यादा संबंध नहीं है। होता यह है दोस्तों कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है, फैक्ट्रीज वाले भी अपना निर्धारित करते रहते हैं, ठेकेदार के जरिए आजकल फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं तो वो बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं, इस तरह के धंधे बहुत चल रहे हैं और इसमें मजदूरों का शोषण होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहां जो बेरोजगारी है उसकी स्थिति आप देख रहे हैं। तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, या कह लीजिए मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिले, सरकार ने यह सिस्टम शुरू किया है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो दिखाई देगा कि आपने सही भुगतान किया है या नहीं किया है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा कदम है, चूंकि ये एक तरह से लेबर वेलफेयर की तरफ है या समावेशी विकास की दिशा में उठाया गया एक कदम है, जो वीकर सेक्शन है उनके फेवर में है, और इसका सबसे बड़ा लाभ तो जो असंगठित मजदूरों को मिलेगा, क्योंकि जो संगठित मजदूर हैं बड़े बड़े उद्योगों में, उनके तो अपने यूनियन है तो उनको तो आप मजदूरी कम नहीं दे सकते, लेकिन असंगठित क्षेत्र जहां 90% से अधिक श्रमिक हैं उनका शोषण रुकेगा ये सरकार मानती है, और काफी कुछ इसका प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन वही है मित्रों कि तो डाल डाल में पात पात लोग रास्ते निकाल लेते हैं। लोग रास्ते इस तरीके से निकालते हैं कि भुगतान तो वो बैंक के अकाउंट में आपको कर देंगे और वो चेक दे देंगे और बदले में आपसे कैश ले लेंगे कि ठीक है 200 रुपये तुम्हारे अकाउंट में जमा किए लेकिन तुम्हारी जो मजदूरी है वो सिर्फ 150 रुपये है, तो तुम 50 रुपये बाद में निकाल करके हमें वापस दे देना। अब इसका तो सरकार भी क्या कर सकती है और क्या उपाय हो सकता है दोस्तों, ये तो केवल जागरूकता से आ सकती है। तो ये एक कंटेंट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान स्पेशली लाना चाह रहा था, क्योंकि इस तरह की कंटेंट सेकेंड पेपर के लिहाज से, यहां तक कि फर्स्ट पेपर के लिहाज से भी, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, एक और आयकर अधिनियम में जो बदलाव किया गया है, ये मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, और उसमें यह हो गया है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, ये कर दिया गया कि धार्मिक संस्थाएं अगर 50,000 रुपये से अधिक का डोनेशन लेती हैं और यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उन पर उनको बकायदे टैक्स देना होगा। ये काले धन के नियंत्रण की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। ये जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जिसे आप उसमें धार्मिक संस्थाएं ले लीजिए, इनको बहुत डोनेशन मिलता है, और अभी जब विमुद्रीकरण का दौर था तो आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि बहुत से जो संस्थाएं थी ऐसी, जो मंदिरों से जुड़ी हुई संस्थाएं थी, वो किस तरह से 500 और 1,000 रुपए के नोटों को ले रही थी, उनको बदल रही थी, क्योंकि उनको कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़ती, नहीं देना पड़ता। तो अब अगर इन पर नियंत्रण लगेगा तो डेफिनेटली जो लोग अपना काला धन वहां दे करके और उसमें टैक्स बचा लेते थे, उस पर भी नियंत्रण लगेगा, और ये धार्मिक संस्थान भी जो काला धन इकट्ठा कर पाते थे उस पर भी काफी रोक लग सकेगी। तो खासकर काले धन की दिशा में उठाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न्यूज में तो ये बात नहीं थी, लेकिन अखबारों में शायद आपको अपने यहां के अखबारों में पढ़ने को मिले, लेकिन यदि नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं इसकी एक क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड आज कर रहा हूं, आप उसमें से इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो तीसरी खबर है फ्रेंड्स, वो वंशवाद को लेकर है, जो आपने न्यूज की हेडलाइंस में सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि वंशवाद की राजनीति कर रही है। फ्रेंड्स, ये खासकर इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में ये बात कही जाती है, जिसे आप वंशवाद कह लीजिए या सामंती परंपरा कह लीजिए, और ये केवल कांग्रेस में नहीं है, दूसरे राजनीतिक दलों में भी है। हाँ, एक बात अच्छी कि भारतीय जनता पार्टी में आपको ये दिखाई नहीं देगी। आप देखिए कि अभी जो तमिलनाडु का मामला है उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि किस तरीके से जो वंशवाद है, वंशवाद एक एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी को नष्ट कर देता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बना के उसे खड़ा करना और फिर सत्ता तक पहुंचा देना आसान काम नहीं है, आप करके देखिए तो पता लगेगा कि कितना मुश्किल काम है। और ये जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जब सत्ता में आती है तो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, हमारे जीवन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालती हैं। आप राजनीति को पसंद करें या न करें, ये आपकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन जीवन पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये आपकी अपनी बात नहीं है, जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं, देश चाहता है, दुनिया चाहती है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ही मजबूत हो, स्वच्छ हो, साफ हो, और आप देख रहे हैं कि उसके लिए अब कदम उठाए जाने शुरू हो गए हैं, जो मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट है, अगर हम सफल हो पाए तो। अब आप देखिए कि AIDMK से अलग होकर के DMK पार्टी से अलग होकर के MG रामचंद्रन जी ने AIDMK पार्टी बनाई, इसके बाद उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रही, उनकी पत्नी के निधन के बाद फिर जो उनके साथ फिल्म में काम करने वाली जयललिता जी थी वो पार्टी की मुखिया बनी, वो चीफ मिनिस्टर बनी। अब चूंकि जयललिता जी का उस तरह से परिवार नहीं है, तो अब उनकी सहेली जो उनके साथ रही थी वो शशिकला जी को अब चीफ मिनिस्टर की बात चली, जिनके बारे में मुझे पहले से थोड़ी सी आशंका थी कि पता नहीं अब क्या होगा, जरा सा वेट करते हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो अब चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपने इससे पहले ही देखा कि वहां किस तरह से बवाल खड़ा हो गया है, कल के चैनल्स में भी आपने देखा, आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब शशिकला जी के खिलाफ कुछ विधायकों ने विरोध व्यक्त किया है, यहां तक कि उनसे ठीक पहले जो पनीर सेल्वम जी थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब देखें कि क्या स्थिति बनती है। ऐसा किस लिए है? इस वंशवाद के ही कारण है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये डेमोक्रेसी में काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो राजनीतिक वैज्ञानिकों को चिंतित करता है कि जो खुद में डेमोक्रेटिक नहीं है वो किस तरह से डेमोक्रेसी को चलाएंगे। और इसीलिए फिर आप देखिए कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर पार्टी में जो एमएलएज वगैरह होते हैं उनकी कोई वक्त रह नहीं जाती है। जो भी पार्टी प्रमुख है वो जो कहेगा बस वही कुछ होगा, उसी के शब्द ही उस राज्य के लिए ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं, जो डेमोक्रेसी की आत्मा के विरुद्ध है। तो मित्रों, इस लिहाज से आपको इस पॉइंट पर विचार करना चाहिए। तो ये मुझे आपको बताना था क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके जनरल स्टडीज मेंस के सेकेंड पेपर के लिए। दोस्तों, न्यूज में बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज पेपर पर। मित्रों, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं अब आपसे बात कर सकूं। एक मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें सरकार जो सरचार्ज जो सेस लगाती है, सरचार्ज उपकर, उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। और प्लीज इस पर आप एक छोटा सा नोट तैयार कर लीजिएगा कि सरचार्ज लगाना कितना सही है कितना गलत है। एक मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको अभी मालूम है कि सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को खत्म कर दिया है। इसके खत्म करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अब इसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है, उस पर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है इकोनॉमिक टाइम्स का, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर रहा हूं। और इसके बाद दोस्तों, हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान, कल के दैनिक हिंदुस्तान में आधार मोबाइल नंबर को लेकर के आपने देखा है कि अब जब सिम आप लेंगे तो उसे आधार नंबर से लिंक कराना होगा, उसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट है बिजनेस स्टैंडर्ड का ही एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर के, कि कैसे केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों की संख्या में कमी की जानी चाहिए, उसको लेकर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और दोस्तों, इसके बाद फिर एक आर्टिकल है हिंदू का जो खासकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। 25 साल हो गए हैं उदारीकरण के विश्व स्तर पर, तो वर्ल्ड WTO जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि उसको कैसे उसकी रीवायरिंग की जाए, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस आर्टिकल का हिंदी सार आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। मित्रों, न्यूज़पेपर के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने पूर्व दो विद्यार्थियों, जो मेरे क्लास के विद्यार्थी रहे, शिवदयाल कुमार और विवेक कुमार मिश्रा जो इलाहाबाद के हैं, उनके प्रति कि उन्होंने आप सबके लिए उसी तरह का संदेश भेजा है कि आप सिक्स्थ बैच के लिए है कि आप सब क्लास में आ रहे हैं और इस समय की महत्ता को समझें, इसे वेस्ट जाने मत दीजिएगा। तो शिवदयाल और विवेक, आपकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आप दोनों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। कुछ अन्य मित्रों के नाम हैं फ्रेंड्स, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद से, नीतू चंडीगढ़ से, महेंद्र कुमार, प्रतिमा शेट्टी कर्नाटक से, अभिषेक राय, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, रुपेश कुमार शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, वसंत कुमार और सौरभ पाठक, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।